मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 26 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं स्वतंत्र कुमार श्रोत्रिय, आपका गांव है मालदा, जिला गिरिडीह झारखंड से। पूजा भट्टाचार्य, आप हैं जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से। अभिलाषा शर्मा, आप हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जय स्वराज मौर्य, आप हैं चंदौली उत्तर प्रदेश से। हरिराम सैनी, आपका गांव है बालरासर अथुना, जिला चुरू राजस्थान से। हेमंत कुमार, आप हैं वन मखली गांव से, जिला है पूर्णिया बिहार। मायाराम, आप हैं मुरैना मध्य प्रदेश से। और प्रियंका मोठा भाऊ अहिरे, पुणे महाराष्ट्र से। तो स्वतंत्र, पूजा, अभिलाषा, जय स्वराज, हरिराम, हेमंत, मायाराम और प्रियंका, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब एक मुझे आप सबको महत्वपूर्ण सूचना देनी है और ये महत्वपूर्ण सूचना अगले जो 3 से 17 मार्च के बीच जो क्लासेस होने वाली है 15 दिन की, उसके बारे में है। और आपको मालूम ही है कि इस बैच के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं। काफी समय से आप सब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं और अभी जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए फिलहाल ₹2000 की छूट है, जिसे हम लोग डिस्काउंटेड सीट्स कहते हैं। ₹2000 के आपको डिस्काउंट मिल रही है। सूचना यह है कि अब डिस्काउंटेड सीट थोड़ी सी ही रह गई है, थोड़ी सी ही डिस्काउंटेड सीट रह गई है। तो आप सब में से जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और साथ ही इस डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं, तो सूचना यह है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहतर होगा, लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। और आगे चल करके जब भी डिस्काउंटेड सीट समाप्त होंगी उसकी घोषणा आपको की जाएगी, उसकी सूचना दी जाएगी। तो यह एक छोटी सी सूचना आप सबके लिए है। और अब मैं उसे एक लाइन में कहना चाहूं तो वह कि अब थोड़ी सी ही डिस्काउंटेड सीट्स बच गई हैं, इसलिए जो भी आप में से डिस्काउंट का फायदा लेते हुए रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, बेहतर होगा कि वे अपना रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी संभव हो सके करा लें। मित्रों, आज के मुख्य विषय में मैं आप सबसे नौकरशाही का राजनीतिक स्थानांतरण, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दो जो छोटी छोटी खबरें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप इसे देख सकते हैं। यह बेसिकली हमारे देश का सबसे लंबा पुल है और ऐसा लंबा पुल जो रेल रोड पुल है, रेल रोड पुल यानी कि रेल के लिए भी है और ये रोड के लिए भी है। तो ये डबल डेकर पुल है, बेसिकली रेल भी चलेगी और फिर उसके ऊपर सड़क भी होगी। मतलब आप कह लीजिए रेल भी क्रॉस कर रही है उसी पुल से और उसके ऊपर जो डेकर जो सड़क बनी हुई है उस पर गाड़ियां भी चल रही हैं। तो ये डबल डेकर पुल है जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर लंबा पुल मायने रखता है। एग्जैक्ट जो लेंथ है इसकी है 4.94 किलोमीटर। ये बेसिकली असम और अरुणाचल प्रदेश का जो ईटानगर है इनको एक दूसरे से जोड़ेंगे और इससे फिर जो दोनों के बीच की जो दूरी है वो काफी कम हो जाएगी। बट नेचुरल है कि जो यात्रा में लगने वाला समय है वो बहुत कम हो जाएगा। और यह जो पुल बना हुआ है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो याद करने वाली कुछ बातें हैं वह यही है कि किस नदी पर बना है, तो ब्रह्मपुत्र। किन दो राज्यों को जोड़ेगा, तो असम और अरुणाचल प्रदेश। और फिर यह है कि हमारे देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल है। बहुत दूसरी खबरें इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक बात मुझे आप सबसे और कहनी है वो, और वो ये कि आज के करंट कंटेंट में एक बहुत ही खूबसूरत लेख डाला गया है, बहुत ही खूबसूरत लेख। ये लेख फैजान मुस्तफा साहब का है, फैजान जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, और इस लेख का शीर्षक है संवैधानिक धर्म तंत्र नहीं चल सकता। मित्रों, अभी कुछ समय से तो फैजान मुस्तफा साहब के लेख उस तरीके से पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं, नहीं मुझे ध्यान आ रहा है कि लगभग एक साल पहले उनके खूब लेख अखबारों में आ रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत लेख लिखते हैं। और सही मायने में यह है कि ये संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, और इनकी व्याख्या इतनी खूबसूरत होती है कि देख करके दंग रह जाता हूं मैं कि ये चीजें कहां कहां से निकाल करके लाते हैं, और जो लाते भी हैं बड़े तर्कपूर्ण होते हैं। ये नहीं कि कुछ भी अपने मन से कह रहे हैं, बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात कहते हैं, मतलब चौंक जाना पड़ता है इनकी बातों को पढ़ करके। और पहले तो चैनल्स में भी डिस्कशन वगैरह में काफी आते थे फैजान मुस्तफा साहब। इनका ये लेख आप जरूर पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत लेख है, बहुत ही प्रभावशाली लेख है, और मैं चाहूंगा कि ये लेख आपके पास मौजूद रहना चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में। और इस लेख की चर्चा आप बहुत से अपने दूसरे उत्तरों आंसर में कर सकते हैं, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटिक्स में, निबंध में, धर्म तंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कई जगह इस लेख से जो आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे, जो विचार मिलेंगे, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको सूचना देनी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि नौकरशाही का राजनीतिक स्थानांतरण। दोस्तों, ये जो विषय मैंने लिया है इसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि आप अभी जिन तीन राज्यों में, खासकर हम नॉर्थ ईस्ट के अपने नॉर्थ की बात कर रहे हैं, वेस्ट और मिडिल की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन जिन तीन राज्यों में चुनाव हुए, इन तीनों राज्यों में सत्ता में परिवर्तन हुआ, यानी कि पहली जो पार्टी सत्ता में थी उनमें बदलाव आ गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी पार्टी सत्ता में आई, क्योंकि जब हम किसी चीज को इस रूप में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सिविल सर्विस पर बात कर रहे हैं। तो आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी थी पहले, उनमें बदलाव किए गए, और बदलाव भी ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत किए गए, बहुत तेजी के साथ बदलाव किए गए। कलेक्टर्स बदले जा रहे हैं, सेक्रेटरीज बदले जा रहे हैं, एसपीज बदले जा रहे हैं, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट पदों पर अफसर थे उनमें तेजी से बदलाव किया जा रहा है, यानी कि उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के ट्रांसफर किए जाने चाहिए। देखिए, अब इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि जब हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि भाई बट नेचुरल है कि जो राजनीतिक नेता हैं, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक जो नेता हैं विधानसभा में बैठ करके कानून बनाएंगे, उन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी नौकरशाहों पर है, ब्यूरोक्रेसी पर है ना। दो पक्ष हो गए, पहला पक्ष चुनकर आता है, दूसरा पक्ष परमानेंट रहता है, स्थायी रूप से रहता है। परमानेंट किसी पद के लिए नहीं है, परमानेंट यह है कि वो नौकरी में परमानेंट है, प्रशासन के सिस्टम में परमानेंट है, राइट। तो एक इसके पक्ष में ये तर्क हो सकता है कि भाई जब नौकरशाही मौजूद है और नया पॉलिटिकल सिस्टम आ गया है, या नई पार्टी आ गई है, पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं कहना चाहिए, नई पार्टी सत्ता में आ गई है, तो इन दोनों के बीच में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। तो तालमेल के लिए ये फिर आवश्यक हो जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आई है वो अपने पसंद के अफसरों को लेकर के आए, ताकि दोनों में तालमेल बैठ सके, और जब दोनों में तालमेल बैठेगा तभी सही मायने में नीतियों को लागू किया जा सकेगा, क्योंकि अब ये जो सत्ता में आई हुई पार्टियां हैं ये अपनी नीतियां बनाएंगे। यहां तक बात ठीक है, लेकिन हम इसे अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसके तहत देखने की कोशिश करते हैं कि इनफैक्ट वो है क्या। देखिए फ्रेंड, जब हम लोक सेवा की बात करते हैं, सिविल सर्विस की बात करते हैं, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो किस तरीके से प्रैक्टिकली लागू हो रही हैं वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, होता ही है, लेकिन जो लोक सेवक से जो अपेक्षा की जाती है, या यूं कह लीजिए कि जो लोक सेवा की विशेषता होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है कि पहली तो यह है कि वो योग्यता पर आधारित है। आप देखते हैं कि कंपटीशन से आप चुन करके ही लोक सेवा में आते हैं, वो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। दूसरा, वो हायरार्की के प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। हायरार्की के प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर आप उस सिस्टम के तहत लोक सेवा में हैं तो एक पद सोपान के तहत आपको काम करना होगा, यानी कि जब आपके सीनियर का प्रमोशन हो जाएगा तभी आपका प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा और सीनियर वहीं का वहीं उसी पद उसी लेवल पर कहना चाहिए रह जाएगा। आप उसका एक सिस्टम है, कमेटी बैठती है और उसमें अगर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो बात अलग है। पद सोपान के सिस्टम पे काम करती है, उनका परमानेंट एक टेन्योर होता है, स्थायी कार्यकाल होता है। और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है अनामता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी, यानी कि वो जो भी काम करते हैं वो सरकार के लिए करते हैं, सरकार के नाम पर करते हैं। अब वो सरकार में मंत्री कौन किस पार्टी का है या मुख्यमंत्री किस पार्टी का है, प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं, इनफैक्ट इससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता, वो बैकग्राउंड में होते हैं और सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है तटस्थ दृष्टिकोण, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनका जो एटीट्यूड होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। देखिए, नागरिक के तौर पर उनकी एक पार्टी किसी पार्टी विशेष के प्रति प्रतिबद्धता हो सकती है क्योंकि वो भी वोट देने जाते हैं, लेकिन जब वो पद पर हैं, निर्णय ले रहे हैं, नीतियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनका न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। उनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होना चाहिए और वो केवल जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी। ये सामान्यतः लोक सेवक की विशेषता होती है। जब हम तटस्थता की बात करते हैं, तटस्थ दृष्टिकोण की, तो देखिए कि तो तटस्थता है वो किस मायने में महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में भी तटस्थता का सिद्धांत बहुत जबरदस्त रूप से काम करता है। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है ताकि जो जनता है उसे ये विश्वास हो कि ये जो प्रशासक हैं, ये जो हमारे अधिकारी हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करते हैं, यानी कि जो भी ये निर्णय ले रहे हैं उनमें कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, जो नियम और कानून है उसके तहत ये निर्णय ले रहे हैं। साथ ही साथ जब मंत्री बनकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि आता है, मंत्री बनता है, तो उन मंत्रियों को भी ये भरोसा होना चाहिए कि ये जो सिविल सर्विस का जो ढांचा है इनकी पूरी की पूरी निष्ठा उनके साथ होगी, यानी कि हमारे साथ होगी। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए राजस्थान को लीजिए, तो राजस्थान में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के पराजय होने के बाद अब उनके प्रधान उनके मुख्यमंत्री नहीं है और उनके मंत्री भी नहीं है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आ गए हैं और कांग्रेस के ही मंत्री आ गए हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, तो मंत्रियों को भी यह भरोसा होना चाहिए कि नहीं, हमें इनकी पूरी निष्ठा मिलेगी। तो उनको कैसे यह भरोसा होगा? उनको भरोसा तभी होगा ना अगर वो ये मानकर चलते हैं कि नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी है वह तटस्थ ब्यूरोक्रेसी है। तो देखिए, हमने जनता का पक्ष देख लिया, हमने मंत्रियों का पक्ष देख लिया, और अब हम देखते हैं लोक सेवकों का पक्ष। लोक सेवक का पक्ष यह है कि उसको यह विश्वास होना चाहिए कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर है वह बेसिकली उनकी अपनी योग्यता और कुशलता पर निर्भर करेगा, राजनीतिक संबंधों पर नहीं। यानी कि मैं जो आगे बढ़ूंगा, मुझे जो प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरा जो कैरियर बनेगा वह मेरी योग्यता के आधार पर बनेगा, तो मुझे ज्यादा अच्छे से अच्छा काम करना है, न कि इस आधार पर कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता हूं, किस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हूं, इसके आधार पर नहीं। अब आप देखिए कि जो मैंने तीनों पक्ष आपके सामने रखे हैं, तो अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी स्थिति में इतनी ज्यादा रिसफल करने की जरूरत नहीं होती है, स्थानांतरण करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं सिविल सर्वेंट से जुड़े हुए, लोक सेवकों से जुड़े हुए, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आता हूं मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं राहुल दीक्षित, जयप्रकाश अग्रवाल रांची झारखंड से, अनुराधा रावत देहरादून उत्तराखंड से, निधि विश्वकर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से, कन्हैया अहिरवार, दिबांजन दास वर्धमान पश्चिम बंगाल से, मधु कुमारी समस्तीपुर बिहार से और दीप शिखा चौहान। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।